मुश्किल अल्फाज की वजाहत। आयत नंबर 33 में लफ्ज है इन्नल्लाह हस्तफा, यह आप पहले भी पढ़ चुकी हैं। क्या इसका रूट है? स्वाद। हाँ सही है। तो इसका रूट है स्वाद फा वाओ। इसके लफ्जी मानी होते हैं पाको साफ होना, मुखलिस दोस्त को भी कहते हैं, और असफा भी इसी से है। तो इस्तफा के मानी है किसी को उसकी पाकीजगी और तहारत नफ्स की बिना पर मुंतखिब कर लेना। पाकीजगी और नफ्स की तहारत की वजह से किसी का इंतखाब करना, इसके लिए इस्तफा का लफ्ज जो है वो आता है। पाकीजगी की बिना पर उसे चुन लिया। चुनने की कई वजूहात हो सकती है ना, कितनी खूबसूरत बात है कि तहारत और पाकीजगी की बिना पर चुन लिया। अल आलमीन, अल आलम वाहिद है और अल आलमीन जमा है, और अगर होता अल आलमैन तो तस्निया हो जाता कि दो दुनिया। जुर्रियतन, जाल रारा, हाँ ये चूंटी के लिए भी आता है और इसके मानी है औलाद के। अब आप देखें कि जैसे अगर आप चूंटी पर भी जो है वो गौर करें तो जैसे छोटी छोटी चूंटियां कसरत से जो है वो चलती है ना, तो कुरान में औलाद के लिए वैसे लफ्ज कितने आए हैं। एक औलाद का लफ्ज है जो इस्म जिन्स है वलद से निकला है, दूसरा जुरियतन है। तो जुरियतन जो है बाज लोग कहते हैं कि जाल रा रा से छोटी चूंटियां, छोटी छोटी बहुत सी चल रही होती है ना, इसी तरह औलाद फिर फैलती जाती है। और बाज कहते हैं कि इसका वायद है जुर्रतुन और इसी से फिर जुरियत है। तो बहरहाल वो छोटी चूंटी की वजह से इस लफ्ज को हर तरह की औलाद के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। बाज कहते हैं कि इसका रूट जाल रा हमजा भी हो सकता है। जरुन के मानी होते हैं जैसे जमीन में कुछ बोना, जरात करना, काश्तकारी करना, तो हर वो चीज जो बोई जाए खेती की जा सके। तो इसी तरह जैसे अगर इससे भी लें तो फिर मजीद क्या है कि बेटे बेटियां पोते 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 पोतियां नवासे नवासे, तो चीज आगे जो है बढ़ती चली जाती है। इस तरह ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है औलाद। आम लफ्ज है इमरातु, इमरातु इसके मानी है औरत के। क्या इसके मानी है? औरत के मानी है। और इसका ऑपोजिट क्या है? रजुल, आदमी को कहते हैं। तो इमरतुन एक औरत को कहते हैं, तो इसकी जमा क्या है? निसा, निसा, और उसकी जमा क्या है? निस्वतुन। ये आप सब पढ़ चुकी हैं। नजर तो नून जाल रा, नून जाल रा इसके मानी है नजर मानना। जैसे जो चीज अपने ऊपर वाजिब नहीं है खुद से अपने आप उस अपने ऊपर उसको जो है वो वाजिब कर लेना। बतनी, बा तोए नून बतन, और इसके मानी होते हैं पेट के, पेट। पेट का लफ्ज जो है आप देखें कि अक्सर आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ ही पेट का लफ्ज जो है एक तो होता है ना कि जैसे हमारा पेट है, हम उसके लिए इसको जिस्म का एक हिस्सा है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पेट का लफ्ज जो है किसी चीज के अंदर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, अंदर के लिए, अंदरूनी। जैसे आप कहते हैं कि जो है वो बिताना, बिताना, जैसे आप जो लिहाफ है उसके अंदर जो कपड़ा लगाते हैं उसको भी बाद में बिताना, अंदर अंदर जो चीज लगाई जाती है अस्तर के तौर पर उसको, उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, अंदरूनी के लिए भी। तो ये जैसे मादी हिस्सी दोनों तरह इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल यहाँ पे इसके मानी वतन के, पेट के हैं, मेरे पेट में। मुहर्ररन, मुहर्ररन ये अहम लफ्ज है, इसका रूट है हा रा रा, और यहाँ पे जो है इसके मानी है आजाद किया हुआ, इसके मानी है आजाद किया हुआ। कुरान में आजाद के लिए तीन लफ्ज आए हैं, उसमें पहला है हर, हुर, इसके मानी है आजाद, और इसका ऑपोजिट है अब्दुन, गुलाम। तो हुर जो होता है ना, ऐसा शख्स होता है जो किसी का गुलाम ना हो, आजाद हो। आयत नंबर 36 में है वदाअतहा, वो द्वाद ऐन, इसके मानी है रखना, रखना। रखना के लिए कुरान में दो लफ्ज आए हैं, एक है वदा का और दूसरा है अलका। वो द्वाद ऐन के मानी होते हैं किसी चीज को उठाना, बुलंद करना। जैसे वदा के मानी होते हैं, जैसे ये असल में रफा, रफा का ऑपोजिट है। रफा का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उठाना, बुलंद करना। तो जो उठाई हुई चीज है, बुलंद की हुई चीज है, जब उसको नीचे रख दिया जाए ना तो वदा आता है। तो वो द्वाद ऐन के मानी है किसी चीज को आराम से नीचे रखना। तो वदाए हमल के मानी है तो वो बोझ जो औरत ने पेट में उठाया हुआ था, अब उसको उसने नीचे रख दिया। ये पेट जाहिरी हो सकता है, बातनी हो सकता है, बहरहाल वदा अतहा उसको नीचे रख दिया, जन दिया उसको। फिर इसके साथ ही आम लफ्ज है, आप देखें कि उनसा आया है, जकर आया है, और उनसा जो है आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, उनसा, इसी से मुअन्नस भी आता है। इसका रूट है अलिफ नून सा, और औरत को कहते हैं। हर जो चीज मुअन्नस होती है ना, जो तानीस होती है, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो के उसका मुजक्कर होता है तो उसके लिए जो है वो फिर जकर या मुजक्कर लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखें कि औरत के लिए कुरान में तीन लफ्ज आए हैं, एक तो है उनसा का, मादा को कहते हैं, या ये जकरुन के मुकाबले में आता है, जैसे यहां पे इसका ऑपोजिट जकरुन है, और सब जानदारों की मादा जो है ना उसको उनसा कहा जाता है, जितने भी जानदार हैं। इसी तरह बनी नौ इंसान की मादा जो है वो कौन है, औरत है, तो उसको भी उनसा कहा जाता है। और दूसरा लफ्ज है इमरातुन आता है, तो इमराउन या इमरातुन औरत है, और मर्द के लिए आता है मरुन या इमरान, और फिर निसा है जो कि फिर इसकी जमा है। तो यहां पे भी यही है, जकर और उनसा। सब नई तुहा सीन मीम वो मरियम, मीम रा या, ये इब्रानी जबान का लफ्ज है, जिसके मानी है आबिदा और रब की खादिमा के। वो ई दुहा ऐन वो जाल, इसके मानी है पनाह देना। पनाह देने के लिए कुरान में तीन लफ्ज हैं, एक है अजार का, एक है आज का, और फिर इसी के साथ तीसरा आप इस्तेआज भी कह सकती हैं। तो बुनियादी तौर पे दो हैं, अजार या जार, दुश्मन से पनाह और हिफाजत के लिए। इसी तरह आज या तावुस, उसके मानी क्या है कि किसी के शर से पनाह लेना। तावुस में भी हम जब पढ़ते हैं आउजू, तो उसमें क्या करते हैं, शैतान के शर से پناہ لیتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، اللہ کی حفاظت مانتے ہیں. کفلہ کاف لام، اس کے لفظی معنی ہے حصے کے، حصہ. اب آپ دیکھیے کہ قرآن میں حصے کے لیے جو ہے وہ مختلف الفاظ آئے ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے نا کاف فا لام ہے. اس کے معنی ہے کہ کسی کو کسی کی کفالت میں دے دینا، جیسے کفل کہتے ہیں ضمانت کو، کفالت کو، کسی کام کا لازمی بدلہ، خواہ اچھا ہو یا برا. تو کفل کے معنی ہے کسی اچھے یا برے کام کے بدلے میں حصہ دیا جائے. وکفلہا، اور اس کو سرپرست بنا دیا، اس کی کفالت میں دے دیا، اس کی ضمانت میں دے دیا. اس کی ضمانت میں زکریا علیہ السلام کی. المحراب، حارابا حرب، جنگ کو کہتے ہیں. اور محراب جو ہے مسجد کے اندر جو جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے جس میں امام کھڑا ہوتا ہے، وہ عبادت خانہ، تو اس میں وہ کھڑا ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھاتا ہے، خطبہ دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان سے مستقل جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اس لیے اس کو محراب کہتے ہیں. محراب کا لفظ جو ہے یہ بڑا ہی معروف لفظ ہے، آپ نے بھی یہ لفظ جو ہے یہ سنا ہوگا. پھر اس کے بعد ہے رب حبلی، وو ہابا وہابا، اور اس کے معنی ہے دینا، عطا کرنا. وو ہابا، تو اے اللہ دے دے، عطا کر دے. اور خاص طور پہ جب انسان جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے دے دے، مجھے بخش دے. تو اللہ کا نام بھی ہے وہاب. وہاب کون ہے؟ دینے والا. اور اصل دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے. تو وہاب کے معنی ہے کہ دینے والا. اور جب یہ کہتے ہیں نا کہ حبلی، دے دے مجھ کو، اور ویسے اگر آپ دیکھیں گی تو دینے کے لیے قرآن میں بہت سے الفاظ آئے ہیں، بہت سے الفاظ آئے ہیں، جیسے اس 10 لفظ آئے ہیں. اور وہاب کا معنی ہوتا ہے چھٹا حصہ، یہ چھٹا درجہ ہے اس کا. اس کے معنی ہوتے ہیں بلا معاوضہ اور محنت کسی کو کچھ دینا، اور بعد میں کسی فائدے یا عوض کی توقع بھی نہ رکھنا. تو اللہ تو انسانوں کو ایسے دیتا ہے نا. پھر آیت نمبر 39 ہے، اور اس میں لفظ ہے سید کا. اور سید جو ہے یہ کہتے ہیں سردار کے لیے بھی آتا ہے، جیسے لیڈ کرنے والا، اور بزرگ وغیرہ جو ہوتا ہے نا اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور سید کا لفظ جو ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ جیسے سید ذات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے جیسے سرداری کے لیے، بزرگی کے لیے. پھر دوسرا لفظ ہے حسورن، ہا سواد را، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گھیراؤ کر لینا. حسورن کے معنی کیا ہے؟ گھیراؤ کر لینا. اور سید کا روٹ کیا ہے؟ سین مودال. اور حسورن کا روٹ کیا ہے؟ ہا سواد را. سین مودال، اس کے معنی سردار کے بھی ہیں، شوہر کے بھی ہیں. شوہر کے لیے بھی سید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر سردار کے لیے بھی. اور حسورن حسر سے، حسار سے، حفاظت کرنے والا، ضابطے والا، ضبط نفس رکھنے والا، اور نکاح کی رغبت نہ رکھنے والا، اس طرح بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. حسورن، پاک باز، بدیوں سے باز آنے والا، اپنے آپ کو घेरे में रखने वाला, अपने ऊपर मुस्तकिल कंट्रोल रखने वाला। फिर हम लगते हैं आखिर आयत नंबर 40 में, और आखिर कहते हैं बांझ को। इसका रूट है ऐन काफरा, इसके लफ्जी मानी है काटना, घाव जैसे किसी को जख्म लगा देना, जैसे अलकलबुल अकूर काटने वाले कुत्ते को कहते हैं। अकरन नखला, खजूर के दरख्त को जड़ से उखेड़ दिया। इसी तरह अल अकरू किसी आखिरी बच्चे को भी कहते हैं जिसके बाद कोई औलाद ना हो। और आखिर का लफ्ज ऐसी औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके पहले औलाद होती रही हो और फिर बाद में उसके औलाद आनी जो है वो होना बंद हो जाए। और ये लफ्ज औरत मर्द दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आखिर का लफ्ज वो जिसके पहले औलाद होती रही बाद में बंद हो चुकी हो, और अकीम वो होता है जिसके औलाद पैदा ही ना हो। अकीम का लफ्ज भी आता है बांझ के लिए कि जिसके औलाद पैदा ही ना हो, और अकीम भी मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है, आखिर भी मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है। फिर आयत नंबर 41 है रमजा, रा मीम ज़े रम्ज़, और इसके मानी होते हैं इशारा। इशारा करना, इल्ला रमजा। अब आप देखें कि इशारा करने के लिए एक तो खुद इशारा लफ्ज है, उसका रूट है शीन व राबी, शीन या राबी, उसके मानी होते हैं मुंह खोले बगैर हाथ की हरकत से किसी को कोई बात समझाना, और रा मीम ज़े के मानी होते हैं रम्ज के होंठ से इशारा करना या हल्की सी आवाज निकालना, और हर वो कलाम जो इशारे की तरह हो उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो इशारा है हाथ की हरकत से इशारा करना, और अगर होंठों की हरकत से कोई इशारा किया जाए ऐसे बहुत हल्की सी आवाज तो उसके लिए रम्ज का लफ्ज बोला जाता है। अशी आइन शीन वो शाम को कहते हैं, वल इबकार बा काफरा ये सुबह को कहते हैं, सुबह के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज सुबह। बुकरा भी कहते हैं ना कि कल। फिर दोबारा इस्तफा की आ गया, ये आपने पढ़ी लिया, क्या रूट है इसका स्वाद फावो। फिर उकनुती आया, इसका रूट क्या है काफ नुनता। अम्बा जो है ये नबा की जमा है, बड़ी खबर को कहते हैं। अकलाम कलम से है लिखना कलम। यख्तसिमून, यख्तसिमून अहम लफ्ज है और इसके मानी है झगड़ा करना, और झगड़े के लिए भी जो है वो कुरान में 8 लफ्ज आए हैं, और उसमें ये जो खास वाद मीम है इसका 6ठा दर्जा है। इसके मानी होते हैं किसी चीज के दावेदार होने की बिना पर दूसरों से झगड़ा करना। ये एक मुद्दई है और एक मुद्दा अलह है, या तो दोनों में से कोई एक झगड़ा कर रहा है या दोनों झगड़ा कर रहे हैं, तो ऐसा झगड़ा या मुकदमा जिसमें फरीकैन के हकूक बराबर हो या जेरे बहस हो, यानी दोनों के हकूक हैं और उस पर बातचीत हो रही है, जेरे बहस है, उस वक्त ये बोला जाता है। वहल अता का नबाउल खस्म, भला तुम्हारे पास उन झगड़ने वालों की भी खबर आई। और पीछे आपने एक लफ्ज और भी पढ़ा था अलदुल खिसाम, वो 7वां दर्जा है। आप जदल पढ़ चुकी हाजा वइन हाजू का, हाँ हुज्जतबाजी, ये 3रा दर्जा है, दलील पर गालिब आना, हुज्जतबाजी करना, अपने दावे पर दलील देना। फिर तनाजा इख्तलाफ, किसी चीज को इसकी करारगाह से पकड़कर खींचना, खींचा था नहीं, झगड़े का तूल पकड़ना, तनाजा हो गया उन लोगों में, उस वक्त भी आप ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल झगड़ने के लिए इतने अल्फाज हैं, कुछ पढ़ लिया कुछ इंशाल्लाह पढ़ लेंगी। फालत क्या मादा है इसका, काफ व लाम कौल से है। मरियम मीम रा या इब्रानी जबान का लफ्ज है, किसके मानी है? आबिदा और रब की खादिमा के। इस्महू, इस्म जो है वो नाम के लिए आता है, किसी भी शख्स चीज या जगह का नाम। तो यहां पे है इस्महू उसका नाम। वजीहन, वजीम हा वजहुन, वजहुन कहते हैं चेहरे को। और इसी तरह ये लफ्ज जो है रजामंदी के लिए भी आता है। इसी तरह वजीहन, वजीहन के मानी होते हैं इज्जत वाला, इज्जत वाला, वजाहत वाला, या फिर आप कह सकती हैं मुअज्जज, मुअज्जज। और इज्जत वाला और मुअज्जज, तो इसके लिए अगर आप देखें तो बहुत से अल्फाज हैं कुरान में, जैसे आज़ा भी है, अकरम भी है, जैसे किसी की तकरीम करना, किसी का इकराम करना। लेकिन यहाँ पर वजीहन, जो खुद इज्जत वाला है, खुद वजाहत वाला, जैसे चेहरे के ऊपर भी होती है ना एक रौनक सी, एक इज्जत भी, एक वकार, तो इस तरह ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वो जीम हा इज्जत वाला। अल-मुकर्रबीन, अल-मुकर्रब वाहिद है, अल-मुकर्रबीन इसकी जमा है, और इसका रूट क्या है? शाबाश, क़ाफ़राबा क़ुर्ब से है, क़ुर्ब करीबी होना। और करीबी होता है एक तो ये कि जैसे एक की कुर्सी दूसरी की कुर्सी के पास है, आप बिल्कुल साथ साथ बैठी हैं, तो ये भी जगह के लिहाज से करीबी। एक होता है दिल में करीबी होना, दिल में एक इज्जत मकाम होना, प्यार का होना, तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है अल मुकर्रबीन। युकल्लिमु, काफ लाम मीम इसका मादा है, और युकल्लिमु का मादा भी वही है जो पीछे आपने बिकलिमतिन का मादा पढ़ा, सेम ही है। वैसे इसके लफ्जी मानी क्या होते हैं? हाँ, लफ्जी मानी इसके कलाम के हैं कि कलाम करना, गुफ्तगु करना और बोलना, बातचीत करना, इसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और इसके एक और माने भी बयान किए जाते हैं, जैसे जो इसके लुगत के एतबार से माने, जख्मी करना। शाबाश, तो लुगत के लिहाज से जो इसके मानी है वो है जख्मी करना। महद, मीम हा दाल महद, ये कहते हैं माँ की गोद को, गहवारा, माँ की गोद, गहवारा, ये बड़ा मारूफ लफ्ज है। और इसके लिए कुरान में गोद के लिए दो लफ्ज आए हैं, एक है महद का, दूसरा है हुजूर का। महद होता है जैसे पंगूड़ा, गहवारा, दूध पीता बच्चा जो है ना, इसका पंगूड़ा उसकी माँ की गोद है। जब तक वो दूध पीता रहता है तो माँ की गोद उसके लिए गहवारा बनी रहती है, वो बैठा होता है ना उसके अंदर हिल हिल कर, जैसे पंगूड़े की तरह, झूले की तरह वो उसमें दूध पी रहा होता है। तो महत कहते हैं दूध पीते बच्चे के लिए माँ की गोद। और हुजर होता है बड़ी उम्र के बच्चों के लिए गोद का ये कफील है, जैसे जो बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं ना उनके लिए हुजर का लफ्ज। और हुजूर वाहिद है, हिजर या हुजर कहते तो गोद को ही है लेकिन ये जमा है। वाहिद है हिजर और हुजर, जमा है हुजूर। जैसे कोई किसी की जेरे निगरानी हो ना उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वो उसकी गोद में है, उसकी जेरे निगरानी है, तो यहाँ पे महद गोद के लिए है। फिर उसके बाद है कहलन, काफ हालाम, उधेड़ उम्र का होना, और काहल कहते हैं 30 साल से 50 साल की उम्र को, 30 से 50 साल की उम्र को। बाघ कहते हैं 40 से 60 साल की उम्र। बाघ कहते हैं 20 से 50 साल की उम्र। तो का हालाम के मानी है उधेड़ उम्र होना, जैसे जवानी से थोड़ा ऊपर लेकिन बुढ़ापे से जरा पहले। बहुत ज्यादा जो बूढ़ा होता है ना उसके लिए नहीं आता ये काहल का लफ्ज। और वैसे बूढ़े के लिए कुरान में 7 लफ्ज हैं। एक है शेख, दूसरा है शीब। शीबा का लफ्ज आप सूरत मुजम्मिल में पढ़ेंगी। फिर है कहल, ये भी पढ़ा। चौथा अजूज है, ये सिर्फ मोहनस के लिए आता है, बूढ़ी औरत के लिए जिसके औलाद आना, औलाद होना बंद हो जाए। जब मेंसिस बंद हो जाते हैं, औलाद बूढ़ी हो जाती है, तो मेंसिस का बंद होना इसी तरह जो है वो औरत के औलाद होना भी बंद हो जाता है। कालत या वैलता अलिद हुआ ना अजूजुन व हाजा बाली शेखा। फिर इसी तरह मुअम्मर, ये मुअम्मर उम्र रसीदा के लिए बोला जाता है, जिसकी काफी उम्र हो जाती है। आपने सूरत अल बकरा में आवान का लफ्ज पढ़ा था, आयन व अलिफ नून, आवान। हाँ, दरमियानी उम्र, उधेड़ उम्र। इंसान, हैवान, औरत, मर्द सबके लिए आता है। और आवान के साथ ही फिर है फारिद, उम्र रसीदा। ये गाय या बैल के लिए मखसूस है फारिद। इसकी जिद है बिक्र। आपने एक ही आयत में, आयत 68 में ये 3 लफ्ज पढ़े थे, काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुल ला फारिदुम वला बिक्रुम अवानुम बैना जालिक। यमससनी मीम सीन सीन, मस करना, छूना, टटोलना, छूना। जे तुकुम जीम हमजा, जीम अलिफ हमजा, जा मुस्तकीम काफ व मीम कौम से है। आयत न जी आना का यही रूट है। जीम अलिफ हमजा भी है और जीम या हमजा भी हो सकता है, या आप यूं भी कह सकती हैं जीम अलिफ हमजा, जीम हमजा या जी। आयत नंबर 52 में है अहस्सा, अहस्सा हा सीन सीन। अब आप देखें कि एक होता है जस्सा और एक होता है हस्सा। हस्सा के माने होते हैं बैरूनी हालत मालूम करना, जुस्तजू करना। हसीस आवाज के लिए ये लफ्ज़ फिर इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखें कि एक हरफ के फर्क से मानी में कितनी तब्दीली पैदा हो गई। हस्सा एक है हस्ससा, हस्सस, और एक है जस्सस। तो जो हस्सस है ना, बैरूनी हालत मालूम करने के लिए जुस्तजू, ये पसंदीदा सिफत है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा था, या बुनैया इज़हबू फतहस्ससु मिन यूसुफा व अखी। ऐ मेरे बेटो, जाओ और यूसुफ और इसके भाई को तलाश करो अलैहिस्सलाम। हस्सस तो अब वो अंदर से तो नहीं पता करता था, इधर उधर टो लगाना। और एक होता है जस्सस, किसी चीज के अंदरूनी हालात मालूम करने की जुस्तजू करना, जासूसी, किसी से लफ्ज जासूसी है। और ये अमूमन बुरे मानों में इस्तेमाल होता है जस्सस। और यहाँ पे क्या है, अहस्सस, हस्सा। और फिर इसके माने क्या है, बैरूनी हालत मालूम करने के लिए जुस्तजू। अंसवारी नून स्वाद रहा, मददगार के लिए आते हैं और आगे अल हवारियून भी मददगार के लिए आता है। नून स्वाद रा किसी पर जुल्म या ज्यादती को रोकने के लिए उसकी मदद करना। नासिर ऐसे मददगार को कहते हैं जो किसी ऐसे मौके पर मदद करे कि कोई जुल्म कर रहा तो आगे बढ़कर वो रोक दे, तो नासिर कहते हैं। इसकी जमा अंसार है। फिर इसी तरह हवारी हावरा, आप देखें कभी आपने मट्टी देखी हो और उसके ऊपर सफेद सफेद होता है ना, सफेद जैसे कलर वगैरह, तो उसको भी कहते हैं। बाज लोग उससे कपड़े भी साफ करते हैं, जो ऊपर से व्हाइट व्हाइट मट्टी के ऊपर आ जाता है ना, तो सफेद कलर जिससे कपड़े साफ किए जाते हैं। इसी तरह हावरा इसके मानी होते हैं खालिस के, खास के। तो हवारी वो खास लोग हैं जो के मुश्किल वक्त में साथ दें। मन अंसारी इल्लाह, कौन है मुश्किल वक्त में साथ देने वाला? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये पुकारा था और जो उनकी कौम में मुखलिस लोग थे उन्होंने इसका जवाब दिया था। और बात कहते हैं कि ये जैसे बिल्कुल सफेद को भी कहते हैं, सफेदी को, तो सफेदी खास चीज एक होती है ना, तो जो भी उनकी कौम में से बिल्कुल खास लोग थे तो उनको हवारी कहा जाने लगा। बात कहते हैं कि ये धोबी थे, जिन्होंने साथ दिया था ना, धोबी थे। धोबी क्या करता है, कपड़े धो धो के उसको साफ सुथरा करता है, तो वो कपड़ों को साफ करते थे इसलिए उनको हवारी कहा जाने लगा। या ये कि वो थे साफ दिल वाले, अच्छे थे, मुखलिस थे, साफ थे, इखलास के साथ थे, इसलिए उनको हवारी कहा जाने लगा। बहरहाल अल हवारी यून, तो हवारी वाहिद है और अल हवारी यून इसकी जमा है। खैरुल माकिरीन, और आयत 54 में देखें, मकरू व मकर अल्लाह और खैरुल माकिरीन। यहाँ पे मीम काफ रा ये अहम लफ्ज है, और मीम काफ रा के मानी होते हैं चाल, चाल चलना, तदबीर इख्तियार करना। कुरान में तदबीर के लिए और भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। बाज चालें होती हैं जो सबके सामने होती हैं, बाज चालें ऐसी होती हैं जो के खुफिया होती हैं, और कुरान में इसके लिए चार लफ्ज आए हैं। एक है दबरा तदबीर, दूसरा कैद क्या किया दाल कैद, तीसरा मकर, चौथा हीला। और दबरा ये दुबर पीठ को कहते हैं ना, दुबर पीठ को कहते हैं, इसी तरह आप कहते हैं कि इसके लिए तदबीर करनी चाहिए। जैसे आंधी आ रही है, तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा जो है वो बारिश बहुत ज्यादा हुई, पानी का रेला आने वाला है, तो तदबीर करना। उसके मानी होते हैं किसी काम के अंजाम पर नजर करके इस पे गौर और फिक्र करना, फिर उसके लिए रास्ता सोचना, राह मुतय्यन करना, तदब्बुर भी इसी से है। और कैद के मानी होते हैं ऐसी खुफिया तदबीर जो किसी को मकरूह चीज से दोचार कर दे। हल्के पैमाने पर हो तो ये मकर है, बड़े पैमाने पर हो तो ये कैद है। तो कैद के मानी क्या है, दौ या चाल चलना, किसी काम को सरंजाम देने की खुफिया तदबीर। कैद साहिर जादूगर का हथकंडा, उसकी खुफिया तदबीर, क्योंकि जादूगर जो करतब दिखा रहा होता है पता नहीं चलता, एक खुफिया उसकी तदबीर होती है। ये कैद जो है अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तीसरा दर्जा है मकर का। मकर के मानी होते हैं किसी काम को सरंजाम देने के लिए हीला जोई करना, धोखा करना, खुफिया तरीके से जो है वो कोई चारा चलना। مکر کا لفظ بالعموم برے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بالعموم، وہ کہ یہ اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بالعموم یہ برے مقصد کے لیے جو ناجائز ہو اکثر برے معنی میں آتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ تین لفظ ہیں، مکرو، انہوں نے مکر کیا، ومکر اللہ، اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. الماکر واحد ہے، الماکرین اس کی جمع ہے، ماکر. متوفی کا موفا یا وفا سے ہے، متوفی کا وفا سے ہے، اور وفا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کے کو پورا پورا دینا. پورا پورا عطا کرنا، اسی سے پھر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ مار دینا، کیونکہ جو جسم میں روح دی تھی تو متوفی وفا کی، کہ اللہ پھر پوری پوری اسے واپس لے لی. متوفی کا، وفات دینے والا ہوں تجھے، پورا پورا جو ہے وہ لینے والا ہوں، وصول کرنے والا ہوں، پوری وفا کرنے والا ہوں. جعل، یہ اسم فاعل ہے، جعل سے ہے بنانا، جعل. آیت نمبر 56 میں ہے، ناصرین، ناصر واحد ہے، ناصرین اس کی جمع ہے، اور انصار بھی جیسے ہوتی ہے نا، نصیر، انصار، مختلف. آیت نمبر 59 میں لفظ ہے تراب. تراب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے مٹی کے لیے، مٹی. اور مٹی کی بھی کئی قسمیں ہیں. قرآن میں مٹی کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں نو لفظ ہے. پریشان نہ ہوں، آج تو تراب جو ہے یہ پہلا ہی ہے. خاک، خشک مٹی، جس میں نمی نہ ہو، جسے ہوائیں اڑائی پھرتی ہوں، یہ مٹی کے لیے عام لفظ ہے. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کتنے لوگوں کو آتی ہے جو زمہ، کتنے لوگوں کو آتا ہے اس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں؟ اور اس دن کافر یہ تمنا کرے گا، خواہش کرے گا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، تراب. ہر طرح کی مٹی، خشک مٹی. آیت نمبر 61 میں لفظ ہے نبتہل، اس کا روٹ ہے با ہا لام. اس کے معنی ہے دعا کرنا. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح کی دعا کرنا. ویسے تو دعا کرنے کے لیے جو لفظ ہے، جیسے دعا ہے، سلم ہے، سلو ہے، حیق، تو یہ مختلف لفظ ہیں، لیکن اس کے معنی عام دعا کے نہیں ہیں بلکہ بد دعا کے ہیں. بد دعا کرنا، اچھا یہ جو بد دعا ہے جو کی جاتی ہے اور اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے نبتہل کا، بد دعا کے لیے قرآن میں 4 لفظ آئے ہیں اور اس کا 4th درجہ ہے ابتہلا. اس کے معنی ہوتے ہیں فریقین کا ایک دوسرے پر لعنت کے لیے مکمل آزادی سے دعا اور التجا کرنا. کہ نبتہل با ہا لام کے معنی پھر کیا ہیں؟ کسی کو کسی کی رائے اور ارادے میں آزاد چھوڑ دینا، दुआ में पूरी आजादी और आजिज़ी से दुआ करना, वल बालू वल इब्तिहालु फिद दुआ। और मुबाहला, इसकी एक खास टर्म मशहूर हो गई मुबाहला, इसके मानी होते हैं कि एक दूसरे पर लानत भेजना। इसका अमूमन इस्तेमाल बुरे मानों में ही होता है, जैसे दो लोग हैं या दो ग्रोह हैं, वो इकट्ठे हैं और एक दूसरे को पूरा आजाद कर दिया है, पूरी आजादी दी है कि वो जैसे चाहे दूसरे के लिए जो है ना इल्तजा करे, उसके लिए बद्दुआ करे, उसके लिए लानत भेजे। तो नब कहे, तो टर्म क्या है? मुबाहला। अल कसस, यही इसका मादा है, इसके मानी होते हैं पीछा करना, पीछा करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम तो पढ़ते हैं इसके मानी किस्से के, किस्सा और पीछा करना, इनमें फिर आपस में मुनासिबत क्या है? तो इसकी असल बात यह है कि जो भी किस्सा गो होता है वो क्या करता है कि जब वो किस्सा बयान करता है तो वो तारीख में जो मुख्तलिफ वाकयात, निशानात और मुख्तलिफ जो जगह है ना उनका पीछा करता है, अफराद जो हैं उनका पीछा करते हुए जो है वो आगे आगे उसको फिर बयान करता है। तो इसी से लफ्ज किस्सा गोई के लिए मशहूर हो गया, किस्सा गोई करना, बात को बयान करना। तो किस्से, कहानियां, वाकयात, तो उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाने लगा। तो जैसे यूं देखें तो कहानी जो है, कहानी, किस्सा, वाकयात, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कुरान में इसके लिए तीन तरह के अल्फाज आए हैं, एक है असातीर, दूसरा अहादीस, तीसरा है कसस। और ये किस्सा तो उनकी जमा है, कस्सा निशाने कदम पर चलना, वाकया बयान करना। और कसस से मुराद ऐसी कहानियां वाकयात हैं जो आम लोगों में मशहूर हो गए, सीना बसीना मुंतकिल होते गए। और किस्सा गोई करने वाला जो है ना उस जमाने में जिस जिसने जैसे जैसे बयान की तो उन्हीं निशानियों पे चलता हुआ आगे बढ़ता हुआ सीना बसीना उसको फिर वो बयान करता है। कसत, बिल मुफ्सिदीन, अल मुफ्सिद वाहिद है और अल मुफ्सिदीन इसकी जमा है, फासीन दाल, ये फसाद को कहते हैं। फसाद हिस्सी भी हो सकता है और मादी भी हो सकता है, जैसे कोई गंदा लिटरेचर फैलाए उससे फसाद, गंदी तकरीर कर दी, गलत तकरीर कर दी, सेक्स की और इसी तरह जो है फसाद पैदा किया। और एक होता है मादी फसाद, कत्ल कर दिया, गइबत चुगली सबको नजर आ रही है करके फिर उसके बाद झगड़ा पैदा कर दिया। कुल या अहलल किताबी तआलो, तआलो इसका रूट है ऐन लाम वाव, मानी है बुलाना, आला मकसद की तरफ बुलाना, ऊंचे मकसद की तरफ बुलाना। अब आप देखें ताला, अल्लाह ताला, ताला का भी यही रूट है, उलिया बुलंदी के लिए आता है ना, और अल्लाह ताला तो सबसे ऊंची चीज है। तालो, आओ बुलंद मकसद की तरफ, सवा इन तीन मौया, इसके मानी है बीचों बीच, मरकज, मरकजी नुक्ता, लंबाई चौड़ाई गहराई का दरमियान, वस्त के लिए आता है ना ये, जैसे सवा तरीक सवा सबील, ये वही है, मुसावी भी आप कहती हैं, बराबर बराबर। अरबाबन, रब वाहिद है, अरबाब इसकी जमा है और रब के मानी है पालने वाला, परवरिश करने वाला, हकीर से नुतफे से जीता जागता इंसान जो है पैदा करने वाला और फिर उसको जो है वो पहाड़ों पर जो है वो रसाई देने वाला, कि इंसान जो है पहाड़ों को मुसख़्खर कर लेता है। दूनी, इसकी खास बात क्या है? ज़बील अज़दाद में से है, परे, आगे पीछे सवाए। तुहाजूना, इसका रूट है
हाँ जीम जीम।
हा जीम जीम, हुज्जतबाजी, झगड़ा, दलील। हा उलाई, हाँ ये इसमें इशारा है, जमा है ये। सब हा उलाई, वो लोग, ये लोग। आयत नंबर 68 है और उसमें लफ्ज है अउला, इसको आप शक्ल कर लीजिए। अउला का रूट है मौलामिया, मौलामिया, और इसके मानी होते हैं करीब होना, और यहाँ पे ये इसम तफजील है इसलिए ज्यादा करीब, करीब तरीन। वैसे तो मौलामिया वली दोस्त के लिए आता है ना, तो ये वही रूट है। जैसे दोस्त भी तो करीब होता है ना, कुर्बत है दिल से, जज्बात की किसी भी लिहाज से कोई कुर्बत है, तो ज्यादा करीब होना। तो अउला यहाँ पे ये सब तस्वीर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ज्यादा करीब, ज्यादा अच्छी दोस्ती। आयत नंबर 59 में वद्दत, वो दाल दाल, उसके मानी है चाहना, और वदूद भी इसी से है, चाहने वाला। वद मोहब्बत को कहते हैं। फाइफतुन, तो ए वफा, इसके मानी है, वो तो पाइफा जब बनेगा तो ग्रो बनेगा।
तवाफ,
हाँ तवाफ, तो मानी क्या हुआ है?
घूमना,
घूमना, चक्कर लगाना। ठीक है, तवाफ भी इसी से है कि तवाफ में चक्कर लगाते हैं। और ताइफा कहते हैं ग्रो को, जो इधर से उधर आ जा रहा है, ताइफा। आयत नंबर 71 में तलबेसूना, लाम बा सीन लबेसा, इसके मानी होते हैं जैसे लिबास पहनना, कपड़ा पहनना। अब जब कपड़ा पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो क्या होता है कि जिस्म छुप जाता है ना, तो जिस्म छुप जाता है, तो उसी से तलबेसूना लफ्ज जो है ये छुपाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लिमा तलबिसूना, कि तुम क्यों मुश्तबे बनाते हो, तुम क्यों मिलाते हो, खलत मलत करते हो। लबेसा, क्योंकि अंदर की चीज फिर पता ही नहीं चलती क्या है जब लिबास पहन लिया जाए। तो इसी तरह ये तलबिसू का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज को मुश्तबे बना देना, छुपा देना उसके लिए। कतामा के मानी क्या है? काफ तामीम, छुपाना। तो लबेसा, लबासा के मानी क्या है? मिला देना, गलत मलत कर देना, मिक्सअप कर देना। आयत नंबर 74 है, इसमें लफ्ज है यख्तसु, यख्तसु जी, इसका रूट है खास, स्वाद, स्वाद, तमाम के साथ किसी चीज को किसी के साथ खास कर देना। आप खवास भी बोलती है ना, खासुल खवास, तो जो बहुत ही खास है उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आयत नंबर 75 में का मन हूं, इसका रूट है हमजा मीम नून, इसके मानी है भरोसा करना, ईमान भी इसी से है। जब किसी पर ईमान लाया जाता है, जैसे अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूल पर, तो अल्लाह पर ईमान लाना अल्लाह पर भरोसा करना, अमन पीस। तो का मन हूं तू ईमानत रखे इसके पास, क्योंकि इंसान अपनी ईमानत या अपनी कीमती चीज उसी के पास रख सकता है जिस पर भरोसा होता है, जिस पे ट्रस्ट करता है, ट्रस्ट वर्दी। तो ता मन हूं तू ईमानत रखे उसके पास, वे दीनार, दीनार जो है ये सोने का एक हिस्सा है, और कहते हैं कि एक दीनार के 20 दिरहम होते हैं, इसका रूट है दाल नून रा, और किंतार तो आप पढ़ी चुकी ना, बेकिंतारिन काफ नून तो रा, इसका रूट रुबाई है, और मानी इसके क्या है, ढेरों ढेर, बहुत ज्यादा चीज, सोने चांदी का एक बड़ा ढेर उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। यू अद्दे ही तो आपको आता ही है, हमजा दाल या अदा करना। दुमता, दाल वो मीम दौम, दवाम भी इसी से है, हमेशगी के मानी देता है। अल उम्मीयीन, हमजा मीम मीम उम, तो उम्मी जो है उसे कहते हैं जिसका इल्म अपनी माँ की गोद तक हो, और क्योंकि अगर माँ की गोद तक है तो जैसे बहुत थोड़ा इल्म है, क्योंकि किसी मदरसे मकतब वो गया नहीं, तो बाद का फिर ये लफ्ज अनपढ़ के मानी में भी आता है, जिसे कुछ नहीं आता, अनपढ़। आयत नंबर 70 है, ऐ मानहिन या मीम नून, कसम इसके मानी है, कसम के समन हम कीमती चीज को कहते हैं, सा मीम नून समन कीमती चीज, लोग जमीना नाम भी रखते हैं। अजाबुन अलीम, हमजा लामीम अलम दर्दनाक के मानी में है।